ये आकाशवाणी है। अब आप फरहतना से समाचार सुनिए। भारत ने पाकिस्तान द्वारा इस्लामिक सहयोग संगठन आईओसी के दुरुपयोग की कड़ी निंदा की है। कल शाम नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कहा कि यह पाकिस्तान का पुराना तरीका है और भारत इसके खिलाफ हमेशा आवाज बुलंद करता रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध के बारे में विदेश सचिव ने कहा कि इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर विचार विमर्श जारी रहेगा। उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस मुद्दे के समाधान के संदर्भ में द्विपक्षीय वार्ता की आवश्यकता पर बल दिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज से अमरीका और पेरू की आधिकारिक यात्रा पर जाएंगी। सैन फ्रांसिस्को की अपनी दो दिवसीय यात्रा के दौरान श्रीमती सीतारामन स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में मुख्य वक्ता के तौर पर भाषण देंगी और प्रमुख फंड प्रबंधन फर्मों के शीर्ष सीईओ के साथ बातचीत करेंगी। इसके अलावा शीर्ष सूचना प्रौद्योगिकी फर्मों के सीईओ के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगी। भारतीय जनता पार्टी ने हाल ही में पारित वक्फ संशोधन अधिनियम के लाभ के बारे में खासकर मुसलमानों के बीच जागरूकता फैलाने के लिए आज से 5 मई तक देशभर में अभियान चलाएगी। इसी वर्ष 10 अप्रैल को नई दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में आयोजित कार्यशाला में देशभर के भाजपा पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया था। इसी कार्यशाला में श्री नड्डा ने विपक्षी दलों पर वोट बैंक की राजनीति के तहत संशोधित कानून के प्रावधानों पर मुसलमानों को गुमराह करने का आरोप लगाया। उन्होंने जोर देकर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार वक्फ की संपत्तियों के पारदर्शी और कुशल प्रबंधन के साथ वक्फ के प्रबंधन और कल्याण कार्यक्रमों में पसमानदा पिछड़े मुसलमानों और महिलाओं को हितधारक बनाने के लिए दृढ़ संकल्प है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर पूर्वी दिल्ली के दयालपुर इलाके में कल एक इमारत ढहने से हुई मौतों पर दुख जताया है। सोशल मीडिया पोस्ट पर दोनों नेताओं ने उन लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया। उन्होंने उम्मीद जताई कि घायल लोग जल्द ही ठीक हो जाएंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्थानीय प्रशासन प्रभावित लोगों की सहायता कर रहा है। श्री मोदी ने घोषणा की कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2,00,000 रूपये और घायलों को 50,000 रूपये की अनुग्रह राशि दी जाएगी। राजधानी में जल संकट के समाधान के लिए दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आज निरंकारी कॉलोनी स्थित डीडीए ग्राउंड में 1111 जल टैंकर सेवा का शुभारंभ करेंगे। इस अवसर पर दिल्ली के जल मंत्री परवेश साहिब सिंह भी उपस्थित रहेंगे। उन्होंने बताया कि इन सभी टैंकरों में जीपीएस लगा होगा जिससे हर टैंकर की निगरानी कमांड सेंटर से होगी। श्री सिंह ने रेखांकित किया कि इस कदम से टैंकर सेवा में पारदर्शिता और पानी की समयबद्ध आपूर्ति सुनिश्चित होगी। कूनो राष्ट्रीय उद्यान से 2 चीतों को आज मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य में स्थानांतरित किया जाएगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने चीता संचालन समिति और राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के बीच हुई बैठक के बाद चीतों को स्थानांतरित करने को हरी झंडी दी। कूनो नेशनल पार्क के 9 सॉफ्ट रिलीज बाड़ों और 17 जंगल में वर्तमान में 26 चीते हैं, हालांकि इसकी वहन क्षमता 20 से 24 चीतों की है। संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग पश्चिमी एशिया द्वारा कल जारी नीति के अनुसार अमेरिकी व्यापार संरक्षणवाद में तीव्र वृद्धि अरब अर्थव्यवस्थाओं पर बढ़ते दबाव को बढ़ा रही है, जिससे 22 बिलियन अमेरिकी डॉलर के गैर तेल निर्यात को खतरा है। जॉर्डन सबसे अधिक असुरक्षित है, जिसके कुल निर्यात का लगभग 1/4 हिस्सा संयुक्त राज्य अमरीका को जाता है। ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर संयुक्त राज्य अमरीका और ईरान के बीच परमाणु वार्ता का दूसरा दौर आज रोम में संपन्न हुआ, जिसमें सतर्कता के साथ आशावाद के संकेत मिले। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा कि आगे की दिशा में प्रगति हो रही है और दोनों पक्ष कुछ सिद्धांतों पर सहमत हो गए हैं। ओमान ने मध्यस्थ की भूमिका निभाई। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के अनुसार वार्ता का तीसरा दौर अगले शनिवार यानी 26 अप्रैल को होगा। आईपीएल टी20 क्रिकेट में कल रात जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में लखनऊ सुपर जायंट्स ने राजस्थान रॉयल्स को 2 रन से हरा दिया। 181 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए राजस्थान रॉयल्स ने निर्धारित 20 ओवरों में 5 विकेट के नुकसान पर 178 रन बनाए। आज चंडीगढ़ में पंजाब किंग्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से दोपहर 3:30 बजे होगा। वहीं मुंबई में मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स आमने सामने होंगे। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।